हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल।
नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी
और मैं अंजलि जोशी,
स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में।
दोस्तों, जब चले शहर की ओर का ये सफर हमने शुरू किया था आज से एक साल पहले चंदर की कहानी के साथ,
एक ऐसी कहानी जो हमारे हर प्रवासी दोस्त की जिंदगी से मिलती जुलती है।
और आज हमारा ये सफर अपने आखिरी मकाम तक आ पहुँचा है। जी हाँ, आज हमारे धारावाहिक की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है।
दोस्तों, चंदर की कहानी तो सिर्फ एक तरीका था अपने प्रवासी दोस्तों को ये बताने का कि जाने अनजाने प्रवास के दौरान वो क्या गलतियां कर बैठते हैं और अपने प्रवास के सफर को मुश्किल बना लेते हैं।
लेकिन हमें उम्मीद है कि धारावाहिक चले शहर की ओर को सुनने और कार्यक्रम में बताई गई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के बाद आपका प्रवास का सफर कभी मुश्किल नहीं होगा,
और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी था।
और हाँ दोस्तों, एक और जरूरी बात, हमारे जो प्रवासी दोस्त जब चले शहर की ओर के कुछ एपिसोड किसी वजह से नहीं सुन पाए हैं, वो हमारा अगला एपिसोड सुनना ना भूले जो कि रीकैप एपिसोड होगा।
इस एपिसोड में आपको धारावाहिक शहर की ओर की पूरी कहानी संक्षेप में सुनाई जाएगी।
और आइए दोस्तों, अब आप और हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की आखिरी कड़ी का।
रहे या ना रहे, याद आएंगे ये पल।
पिछले एपिसोड में आपने सुना, चंदर और गजेंद्र अपने पुराने मालिक के पास नौकरी के लिए जाते हैं और उन्हें उनकी पुरानी नौकरी वापस मिल जाती है। कविता और राजेश शादी के लिए गांव पहुंचते हैं और उधर मधु परीक्षा देकर हरिद्वार से घर लौटती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
कविता की माँ, अरे ओ कविता की माँ,
क्या हुआ पिताजी? माँ तो पड़ोस में चाची के घर गई है, कुछ काम था क्या?
अरे हाँ बेटा, तेरी माँ को पैसे दिए थे, न जाने उसने कहाँ रखे हैं। उधर हलवाई सामान मंगा रहा है।
पिताजी, कितने पैसे देने हैं हलवाई को?
बेटा 1000 रुपए देने हैं।
एक मिनट पिताजी, आप ये लीजिए 1000 रुपए।
नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ?
रख लीजिए ना पिताजी।
लेकिन बेटा।
पिताजी, अगर मैं आपका अपना बेटा होता तब भी आप।
अरे ये क्या कह रहे हैं आप राजेश बेटा, आप मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर हैं।
पिताजी तो फिर रख लीजिए पैसे, रखिए ना।
पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो मुझे आप जैसा बेटा मिला है।
और हाँ पिताजी, मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे बेझिझक बता दीजिएगा।
अरे बेटा, इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, काम मैं और छोटू मिलकर संभाल लेंगे, आप अब आराम करो बेटा।
पिताजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने इतना काम किया है कि अब मुझे खाली बैठने की आदत ही नहीं, और फिर शादी का घर है, घर में 1000 काम होंगे, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे काम बताइए बस।
ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
गौजल लगवा कर मेरा रोशन बेटा राजा बाबू बन जाएगा।
दीदी दीदी।
अरे मधु, आराम से आराम से। अरे भाग क्यों रही है?
दीदी दीदी, मैं पास हो गई, वो भी फर्स्ट डिवीजन से।
अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है मधु।
अरे मीरा, मधु, ये तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रही हो?
अरे माँ जी, हमारी मधु फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है।
हैं? पास हो गई है?
जी माँ जी,
ये तो बड़ी खुशी की बात है। मधु, ये सब सुरकंडा माई की ही कृपा है जो आज हमारे घर में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। जय सुरकंडा माँ।
पार्टी में जाएंगे, आलू पूरी खाएंगे। चाची, मैं इन कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ?
बिल्कुल राजकुमार लग रहा है।
और चाची मैं?
तू तो बिल्कुल परी लग रही है, परी। अब मुझे कौन बताएगा मैं कैसी लग रही हूँ?
तुम बहुत सुंदर लग रही हो मधु।
आप कब आए?
बस अभी।
मधु भौजी, अरे चंदर भैजी, आप कब आए?
बस छुटकी अभी थोड़ी देर पहले।
लगता है भौजी के पास होने की खबर बम्बई तक पहुँच गई।
क्या मधु, तुम पास हो गई?
हाँ, आज ही रिजल्ट आया है।
सचमुच मधु, आज तुमने साबित कर दिया, एक औरत अगर कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही दिखाती है। मुझे तुम पर गर्व है मधु। गर्व है।
अरे बौजी मैं तो भूल ही गई, मीरा बौजी और माँ तैयार हो गए हैं, आपको बुला रहे हैं।
अच्छा छुटकी तू चल, मैं बस अभी आई।
और भैजी आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए।
कहाँ?
कविता दीदी की शादी में।
हाँ अच्छा मैं आपके लिए नहाने का पानी रख देती हूँ, आप जल्दी तैयार हो जाइए।
ठीक है, तब तक मैं जरा माँ से मिल लेता हूँ।
दीदी इस जोड़े में तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं।
जीजा जी देखेंगे तो गिर ही पड़ेंगे।
चुप कर। अरे नहीं हमारे जीजा जी भी किसी से कम थोड़े ना दिखते हैं। अरे भाई दीदी ने खुद पसंद किया है उनको।
सुषमा कविता तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली कि तुझे ऐसा वर मिला।
अरे लड़कियों कविता को तैयार किया कि नहीं?
अरे क्यों चाची आप भी हैरान रह गई ना, यार रूप निकल कर सामने आया है कविता का।
अरे नजर लगाएगी क्या मेरी बच्ची को? एक मिनट रुक मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ।
अरे माँ
सचमुच आज बहुत सुंदर लग रही है मेरी कविता।
माँ माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
हाँ बेटा बोलना क्या बात है।
सुषमा बिंदिया मुझे माँ के साथ अकेला छोड़ दोगी?
हाँ 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 चल बिंदिया चलते हैं।
हाँ, चलो।
हाँ कविता बोल क्या बात है।
माँ तुम खुश तो हो ना?
अरे कविता ये भी कोई पूछने की बात है? आज मैं बहुत खुश हूँ और सबसे ज्यादा खुश तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी इस खुशी में तेरी खुशी शामिल है।
माँ मैं चाहती हूँ कि आप सुषमा को भी पूरी पढ़ाई करवाना, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना और उसके बाद ही उसकी शादी करना।
हाँ कविता मैं ऐसा ही करूँगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी, लेकिन आज इस वक्त ये सब बातें।
माँ मैं सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गांव में ये पहला घर है जहाँ एक लड़की अपने पैरों पर खड़े होने के बाद शादी के बंधन में बंधने जा रही है। लेकिन माँ मुझे इस बात का भी दुख है कि इसके लिए मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा, तुम्हें मेरी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ी। माँ अगर आप सुषमा को खूब पढ़ाओगी लिखाओगी उसे अपने पैरों पर खड़ा करोगी तो देखना लोगों के विचार बदलेंगे, बाकी लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और लोगों के लिए लड़कियों को पढ़ाना एक परंपरा बन जाएगी और फिर कभी किसी कविता को अपनी खुशियों के लिए घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ
तू चिंता मत कर कविता, मैं सुषमा की पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आने दूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है।
मधु देखना मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना?
आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर अभी चलिए बाहर, सब कविता की शादी में जाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं।
मधु इतने दिनों के बाद तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम थोड़ी देर बाद कविता की शादी में चलें? तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, आने वाली जिंदगी के बारे में, हमारे बारे में।
बातें तो मुझे भी आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन अभी हमें कविता और राजेश को आशीर्वाद देने जाना होगा, आखिर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं ना।
चंदर मधु देर हो रही है जल्दी आओ।
आए माँ।
देखा नरेन आखिरकार चंदर की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, कविता और राजेश की भी शादी हो गई।
भाई कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे धारावाहिक का अंत खुशियों भरा रहा, यानी कि हैप्पी एंडिंग।
लेकिन दोस्तों इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपकी समस्याओं और आपके विचारों को जाना
और समय समय पर आपसे बातें की।
इतना ही नहीं आपके संदेश आपके अपनों तक पहुँचाए।
जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे सामुदायिक संवाददाताओं की जो पिछले एक साल से लगातार संदेशों के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं।
वैसे नरेन अब तक हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने लोगों से सवाल किए, उनके विचार जाने। क्यों ना इस बार हम अपने सामुदायिक संवाददाताओं से जाने कि जब चले शहर की ओर के साथ उनका अनुभव कैसा रहा।
बिल्कुल अंजलि, तो भाई देर किस बात की, आइए जानते हैं हमारे सामुदायिक संवाददाताओं के अनुभव।
मेरा नाम अनीता नेगी है, मैं दिल्ली मीठापुर में रहती हूँ। मैं जब चले शहर की ओर में एक सामुदायिक संवाददाता हूँ। जब चले शहर की ओर में मेरा काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। जब चले शहर की ओर प्रोग्राम से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मुझ में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। शुरुआत में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा। मैं जगह जगह लोगों के घर जाकर उनके संदेश और उनके सुझावों को रिकॉर्ड करके इस प्रोग्राम के माध्यम से उनके घर वालों और श्रोताओं तक पहुँचाती हूँ।
आप सभी को मेरा नमस्ते, मैं हूं सामुदायिक रेडियो हेमलवाणी चंबा से रवि गुसाई। और दोस्तों, जब चले शहर की ओर कार्यक्रम के साथ जुड़ने व कार्य करने का मेरा अनुभव बड़ा ही रोचक और मजेदार रहा। इस कार्यक्रम के साथ काम करते हुए बहुत से ग्रामीण लोगों से विभिन्न विषयों जैसे पलायन, एड्स व अन्य समस्याओं पर बातचीत करने का अवसर इस कार्यक्रम के द्वारा मिला, जिससे कि इन मुद्दों व समस्याओं के बारे में मुझे काफी जानकारी मिली। सबसे ज्यादा खुशी यह हुई कि इसके एक कार्यकर्ता के रूप में हम अनेक लोगों तक शहर में होने वाली रोजगार की दिक्कतों, वहां की रहन सहन की समस्याओं व ठगी बेमानी आदि के बारे में जानकारी पहुंचा पाए और उन जानकारियों का लोगों को काफी फायदा भी मिला होगा।
नमस्ते, मैं हूं आरती बिष्ट और मैं सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी में सामुदायिक संवाददाता के पद पर कार्य कर रही हूं। इस दौरान मैंने सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी के साथ मिलकर जब चले शहर की ओर कार्यक्रम के लिए भी काम किया और यह कार्यक्रम पलायन से संबंधित था। इस कार्यक्रम में पहाड़ों से जो लोग बड़े शहरों में नौकरी या अन्य कार्य करने के लिए जाते थे तो उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं, क्या उन्हें सावधानियां वहां पर रखनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जाती थी, जिससे कि बहुत सी जानकारियां मिलती थी और साथ ही लोगों के विचारों को जानने और समझने का मौका मिलता था।
हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष और मैं कल्याण महाराष्ट्र मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है। पहले शुरुआती में तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, काफी झिझक सा लगता था, लेकिन अभी काफी अच्छा हो गया है।
मेरा नाम कमलेश रावत है, मैं दिल्ली मीठापुर से बोल रही हूँ। मैं जब चले शहर की ओर में एक सामुदायिक संवाददाता हूँ। जब चले शहर की ओर के साथ मेरा काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। इस प्रोग्राम के द्वारा मैं खुद में एक आत्मविश्वास ला पाई हूँ। अपने श्रोताओं को यही कहना चाहूँगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और इंसान के अंदर अगर आत्मविश्वास है और सच्चाई है तो इंसान हर छोटे बड़े काम में मतलब सक्सेसफुल हो सकता है।
पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल
दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम जब चले शहर की ओर आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए आज के अपने इस एपिसोड में बात करते हैं आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन की हेड ऑफ प्रोजेक्ट वेनु अरोड़ा से, और जानते हैं कि इस कार्यक्रम को बनाने के लिए उन्हें किस बात ने प्रेरित किया।
नमस्कार वीनू जी, स्वागत है आपका जब चले शहर की ओर में। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपका इस प्रोग्राम को बनाने का क्या उद्देश्य था।
उद्देश्य बहुत ही मामूली और साधारण सा था, वो ये कि जितने भी हमारे प्रवासी दोस्त हैं जो गांव में अपना घर छोड़कर अपने परिवार को पीछे छोड़कर शहरों में काम ढूंढने के लिए आते हैं, उनके प्रवास के अनुभव को हमारी कोशिश थी कि थोड़ा सा हम आसान बना सकें। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं लोगों को जब वो गांव से शहर आते हैं, शहर में कैसे बसना है, शहर में किस तरह की मुश्किलें आएंगी उसके बारे में जानकारी, तो ये सारा कुछ, ये सारी जानकारी देना ही हमारा उद्देश्य था इस कार्यक्रम के पीछे।
जब इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो उसको ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी जो आपने इस प्रोग्राम को बनाने में सामना किया।
मेरा मानना यह है कि अगर कठिनाई को हम कठिनाई समझेंगे तो वो उतना ही बड़ा पहाड़ मालूम होगा, और अगर कठिनाइयों को एक चैलेंज समझकर हम स्वीकार करेंगे और उसमें फिर मज़ा ढूंढेंगे तो उस कठिनाई को पार करने में मज़ा आएगा। तो जब चले शहर की ओर को बनाने में हमें बहुत मज़ा आया, हमारी पूरी टीम को। हाँ, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए कार्यक्रम सही समय पर नहीं बना क्योंकि ब्रॉडकास्ट होना है, या फिर कहानी में कुछ ऐसा मोड़ लाना है जो कि नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह कैसे उस कहानी में मोड़ लाया जाए, तो वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि किसी भी कार्यक्रम को बनाने के लिए आती हैं और मैं उन्हें बड़ी कठिनाई नहीं मानूंगी।
अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने उद्देश्य के बारे में बताया, तो आप किस हद तक इस उद्देश्य को पाने में सफल हो पाई हैं?
हमें श्रोताओं से बहुत खत मिले हैं और बहुत सारे फ़ोन और ईमेल्स भी आए हैं, तो हमें लगता है कि श्रोता इस कार्यक्रम को सुनते हैं, उन्हें इस कार्यक्रम सुनने में मज़ा आता है, वो इसे सराहते हैं। मेरा ये इसलिए मानना है क्योंकि श्रोता हमें खत लिखते हैं और अपने खतों के ज़रिए हमें बताते हैं कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो उसी कारण से मैं ये सोचती हूँ कि कार्यक्रम सफल रहा।
अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
संदेश यही है कि कोई भी निर्णय अगर ज़िंदगी में लेना है, चाहे वो गांव से शहर आने का निर्णय है, उस निर्णय को बिना सोचे समझे और प्रवास के बारे में बिना जानकारी हासिल किए वो निर्णय ना लें, वो प्रवास ना करें। हमारा पूरा साल भर का यही उद्देश्य रहा है लोगों को ये जानकारी देने का, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आज के बाद जितने भी श्रोताओं ने हमारा कार्यक्रम सुना है वो आज के बाद जानकारी हासिल करने के बाद ही प्रवास करें।
आप हमारे शो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर जर्रा जर्रा महकेगा खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे, इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे, फिर जन्नत की
और दोस्तों अब बारी है इनाम की और देखते हैं जब चलें शहर की ओर के इस सीजन का आखिरी इनाम किसे जाता है। तो अंजलि देर किस बात की, फटाफट बता दो कि आखिर किसने जीता है आज का इनाम।
नरेन हमारे इस कार्यक्रम के आखिरी विजेता हैं मुलुंड मुंबई के संजय सिंह राणा। संजय सिंह राणा जी लिखते हैं कि मैं रोजगार की तलाश में पहाड़ों से शहर की ओर निकला और मुंबई शहर पहुंच गया। वहां पर मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, मैं वहां रुका और फिर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटका, मगर कहीं ढंग का काम नहीं मिला। कहीं तनख्वाह कम थी, काम करने के घंटे ज्यादा, साथ ही रहने की समस्या और खाने की समस्या अलग से थी। मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और दो चार जगह काम करने लगा जिससे थोड़ी आमदनी बढ़ गई। फिर मैंने एक छोटा सा ढाबा भाड़े पर लिया, ढाबा अच्छा चलने लगा, फिर मैंने अपना खुद का ढाबा लिया और आज मैं यहाँ पर अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ।
संजय सिंह राणा जी, आपकी चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक सुंदर सा ट्रैवल बैग। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों जब चलें शहर की ओर कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके संबंध में आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा।
हमारा पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
आप हमें अपना फीडबैक हमारे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com। और श्रोताओं एक बात और, आप हमें ये बताएं कि अगर आप चंदर की कहानी के लेखक होते तो शहर की ओर धारावाहिक की समाप्ति कैसे करते। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।
तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारी, तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारी, तस्वीर देखी तुम्हारी कियानी भरे दुलाठियाली, तस्वीर देखी तुम्हारी कियानी भरे दुलाठियाली, दीराजनी दरे दूरे तुम्हारी यादों का, हाँ तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारी, तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारी।
मा तेरी हसूलियों को दिल्हा तेरी चौंठी को गोला मा तेरी हसूली को दिल्हा तेरी चौंठी को हे चौंद कोटिया बांध चौंद कोटिया बांध गल गलियाण का बीच मा बांध झाकस दी क्या दी तू हाँ बह गल गलियाण का बीच मा बांध झाकस दी क्या दी तू
आवारे गावारे नाचारे तांदी रास्तू जू मेला हो बाला दीवा बाती ओसे की राती खेलियो ला भेला हो
आती है आज के संदेशों की।
दोस्तों अब तक हमने आपके संदेश आपके अपनों तक पहुंचाए, लेकिन इस एक साल के सफर के दौरान आप लोग कब हमारे अपने हो गए पता ही नहीं चला।
इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बार जब चले शहर की ओर की टीम के संदेश हम आप तक पहुंचाएं।
तो आइए दोस्तों सुनते हैं क्या कहना है जब चले शहर की ओर की टीम का आपसे।
मेरा नाम रामकृष्णन है और मैं आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन का डायरेक्टर हूँ। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी प्रवास करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए और बगैर घर वालों से पूछे कभी भी कदम न उठाइए।
मेरा नाम अनीशा गुप्ता है और मैं जब चले शहर की ओर कार्यक्रम पर प्रोग्राम ऑफिसर रही हूँ। श्रोताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वो जब भी पलायन करें सोच समझ कर पलायन करें और जो भी निश्चय लें इस पलायन के दौरान अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से काम लें।
नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम मनीष है और मैं एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर जब चले शहर की ओर कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों
हमारी पूरी कोशिश रही है कि कार्यक्रम जब चले शहर की ओर में हम उन तमाम जानकारियों को शामिल करें जो आपके प्रवास के सफर को सुखद और आसान बनाती हैं। मेरा हमारे श्रोताओं को संदेश है, ये जानकारियाँ सिर्फ जानकारियाँ ना रहे और आपके जीवन का हिस्सा बने, इसलिए आप इन्हें अपनाएं और अपने प्रवास के सफर को सुखद बनाएं।
मेरा नाम हीना यूसुफ है, मैं जब चले शहर की ओर की प्रोडक्शन टीम से जुड़ी हूं। जब चले शहर की ओर हमारा छोटा सा प्रयास था आप सभी के प्रवास के सफर को आसान बनाने का, और मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आपने न केवल चंदर और उमेश की गलतियों से सीखा होगा बल्कि मधु की तरह जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी होगा।
मेरा नाम विशाल है और मैं जब चले शहर की ओर के लिए म्यूजिक स्कोरिंग करता हूं। मेरा सभी श्रोताओं से यही अनुरोध है और मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए और कभी भी प्रयास के दौरान कोई भी समस्या आए तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए।
नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम हर्ष है और मैं रेडियो कार्यक्रम जब चले शहर की ओर की प्रोडक्शन टीम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सभी श्रोताओं के लिए यही संदेश है कि जब आप गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं तो प्रवास के दौरान अपने परिवार के बारे में भी जरूर सोचें, इस चीज़ को ध्यान रखें और साथ ही कुछ सावधानियां होती हैं जिन्हें आपको रखना चाहिए। मेरा आपके लिए यही संदेश है।
मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं कार्यक्रम जब चले शहर की ओर में फील्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने घरों से रोजगार के लिए बड़े शहरों में पलायन ना करें बल्कि अपने आसपास के संसाधनों में ही अपने जीविका के साधनों को ढूंढें। तो यदि किसी कारणवश उन्हें पलायन करना भी पड़ता है तो वो सुरक्षित पलायन करें, जिस तरह की कार्यक्रम द्वारा उन्हें जानकारी दी गई है कि किस तरह से वे सुरक्षित पलायन करें जिससे कि उन्हें बड़े शहरों में जाकर काम के लिए परेशान ना होना पड़े तथा कोई उनका शोषण न कर सके। इसके साथ साथ सभी श्रोताओं से यह कहना चाहूँगा कि वो अपने पलायन के दौरान अपने परिवार व अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी से रहें तथा अपने परिवार का समय समय पर ध्यान रखें। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ये थी हमारी जब चले शहर की ओर की टीम जिसकी मेहनत की बदौलत हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं
और जिसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं।
तो ये था सफर जब चले शहर की ओर का और उम्मीद है नई जानकारियों और मनोरंजन के साथ आपने इस सफर का खूब आनंद उठाया होगा।
आपने हमारे साथ अपने प्रवास से जुड़े अनुभव बांटे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सहयोगियों हेवल वाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज़ भणज का भी,
और हम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग को भी नहीं भूल सकते जिनकी मदद से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो दोस्तों, याद रखिएगा हमारा अगला और इस सीजन का आखिरी एपिसोड रिकैप एपिसोड होगा जिसमें आप शहर की ओर धारावाहिक की पूरी कहानी एक बार फिर सुन सकते हैं।
और अगर कार्यक्रम के संबंध में आप अपना कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
साथ ही आप हमें अपने सुझाव ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com। दोस्तों, हम आपके सुझावों की कद्र करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जब चलें शहर की ओर के नए सीजन में आपके सुझावों को जरूर शामिल करें।
और इससे पहले कि मैं और नरेन आपसे इजाजत लें, हम आपको सुनाते हैं एक ईमेल जो हमें लिखा है डीके शर्मा जी ने। ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं और लिखते हैं कि इन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है। इन्होंने आगे अपनी जिंदगी के सफर को बयान किया है कि जब ये पहली बार नौकरी की तलाश में अलीगढ़ से फरीदाबाद आए तब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब वो फरीदाबाद में अपने जान पहचान के एक अंकल के साथ रहते थे। आगे लिखते हैं कि मैं हर रोज नौकरी की तलाश में घर से सुबह निकल जाता था और शाम ढले तक नौकरी ढूंढता रहता था, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती थी। तब मुझे लगता था कि उद्योग क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ बीए की डिग्री से नौकरी नहीं मिलती। अच्छी नौकरी के लिए जरूरी है कि आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ा कोई डिप्लोमा हो। उन दिनों मैं बहुत ही निराश रहता था और ऐसे ही एक दिन मेरे एक जानने वाले की मदद से मुझे एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की। मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूँगा।
डीके शर्मा जी, आपके हौसले की हम दाद देते हैं और आपकी आप बीती सुनकर आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पर चलकर मिलेंगे साए बहार के।
बहारों की इन्हीं दुआओं के साथ आज हम आपसे इजाजत लेते हैं अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार।
रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।